5 काव्य और कथानक रूढ़ियां। अब आइए मसनवी शैली की प्रेम कथाओं की काव्य तथा कथानक रूढ़ियों की बात करें और देखें कि पद्मावत में उनका क्या रूप है। मसनवियों में आई काव्य रूढ़ियों में मुख्य हैं प्रारंभ में परमात्मा का स्मरण, पैगंबर का गुणगान, गुरु परंपरा का वर्णन और शाहे वक्त की प्रशंसा। इसके अलावा कुछ छोटी काव्य रूढ़ियां भी हैं, मसलन अपने पहले की कृतियों की चर्चा आदि आदि। पद्मावत में इनका पालन हुआ है और इसी के आधार पर आचार्य शुक्ल ने उसे भारतीय संघबद्ध चरित काव्यों से अलग माना है। इसका एक अन्य भेदक लक्षण यह है कि मसनवियों में भारतीय चरित काव्यों की तरह कथा का विभाजन सर्गों या अध्यायों में नहीं होता, वरन उसमें कथा के प्रमुख प्रसंगों और घटनाओं के आधार पर समुची कथा के ढेरों शीर्षक रखे जाते हैं, जैसा कि पद्मावत में दिखाई पड़ता है। हुआ यह है कि शुक्ल जी के बताए अनुसार प्रायः इन्हें मसनवियों की आम विशेषता मान लिया गया है। यह सही है कि मसनवियों की ये आम विशेषता मान लिया गया है यह सही है कि मसनवियों की ये आम विशेषताएं हैं, परंतु इन्हें मसनवी की बुनियादी विशेषताएं मान लेना नहीं होगा। विद्वानों ने बताया है कि मसनवी और कुछ नहीं एक खास तरह की छंद है, जिसमें जरूरी नहीं कि प्रेम कथा ही लिखी जाए, उसमें 20-25 पंक्तियों की रचना भी हो सकती है और की गई है। वस्तुतः वह प्रेम कथाओं के लिए ही सर्वथा नियत कोई छंद नहीं है, उसमें प्रकृति और परमात्मा से संबंधित रचनाएं भी हुई हैं। इसके अलावा बुनियादी तौर पर यह भी नहीं है कि उसमें परमात्मा की महिमा, पैगंबर का गुणगान या साहेब वक्त का प्रशंसा हमेशा एक ढंग से हुई हो। ऐसी भी मसनवियां हैं जिनमें गुरु परंपरा का उल्लेख नहीं है और न ही उनमें पहले लिखी गई कृतियों का भी उल्लेख है।
काव्य रूढ़ियों के बाद अब कथानक रूढ़ियों पर आइए।
कथानक रूढ़ियां। कथानक रूढ़ियां जो प्रायः सूफी प्रेमाख्यानकों में हैं तथा अन्य भारतीय प्रेमाख्यानकों में भी हैं, मुख्य तौर पर ये हैं: नायिका का पद्मिनी स्त्री के गुणों वाली होना और सिंघल द्वीप से संबंधित होना, नायिका के लिए प्रेमी नायक की तड़प और उसे पाने के लिए उसका जोगी के वेश में बाहर निकलना, मार्ग की तमाम विपत्तियां, समुद्र की यात्राएं, नायक की नाव का समुद्री तूफान में फंसना, अति प्राकृतिक अलौकिक शक्ति वाले लोगों का नायक की सहायता करना, किसी मंदिर में नायक और नायिका का मिलन होना, संदेश देने वालों में वेद पक्षियों का उपयोग, तमाम आगामी संकटों की भविष्यवाणी आदि। जो बात यहाँ हम स्पष्ट करना चाहते हैं वह यह है कि ये कथानक रूढ़ियां विशुद्ध मसनवी शैली की भारतीय प्रेम कहानियां की ही नहीं है, ये भारतीय मूल के आख्यानक प्रेम काव्यों में भी बराबर मिलती हैं। अतएव इन कथानक रूढ़ियों के आधार पर पद्मावत को विशुद्ध फारसी के मसनवी शैली के प्रेमाख्यानकों की परंपरा का मानना सही नहीं होगा। पद्मावत फारसी के मसनवी शैली के प्रेमाख्यानकों से अपने घनिष्ठ संबंधों के बावजूद भारतीय परंपरा के प्रेमाख्यानकों की संगत में भी है।
पद्मावत पर
यह दृष्टिकोण उसे एक बड़ा परिप्रेक्ष्य देता है और जायसी को उनके सूफी मत के अलावा भारतीय काव्यों को अपनी परंपरा से भी जोड़ता है। पद्मावत में जरूर सूफी धर्म मत की बातें हैं। जायसी सूफी संत थे भी, परंतु हम उनकी बहुज्ञता की बात कर चुके हैं। शुक्ल जी ने बहुत सही उन्हें भारतवर्ष का कवि कहा है। वे भारतीय जीवन शैली से ही नहीं भारत की अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं से भी परिचित थे। भारतीय धर्म मतों, बौद्धों, शैवों, नाथों आदि के अलावा उन्हें भारतीय पुराणों की भी जानकारी थी। वे भारत की अपनी साहित्यिक परंपरा की भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते थे। उनके पद्मावत में उनकी इस बहुज्ञता के दर्शन होते हैं। भारत के अपने पुराने इतिहास का भी उन्हें अपनी तरह का ज्ञान था। तभी उन्होंने शेर शाह के जमाने में रहते हुए और लिखते हुए भी अपने से पहले के अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कथा
पद्मावत में लिखी।
यह सही है कि उनके इतिहास ज्ञान में त्रुटियां हैं, इतिहास के तथ्य उसमें पूरी तरह से खप नहीं सके हैं, परंतु उन्होंने इतिहास न लिखकर काव्य लिखा है और उसमें इतिहास का हल्का आधार भर लिया है। उनका भौगोलिक ज्ञान भी अच्छा है, इसकी ताईद शुक्ल जी ने भी की है। भारत के भौगोलिक दूर दराज के स्थानों के नामों से परिचित होने के अलावा वे समुद्र पार के प्रदेशों की जानकारी भी रखते थे। भारतीय रीति रिवाजों, सामाजिक रहन सहन, खान पान, घर परिवार के नीति नियमों की उन्हें अच्छी खासी जानकारी थी। उनकी यह सारी बहुजता पद्मावत में दिखाई देती है। हिंदू देवी देवताओं और उनसे संबंधित किस्सों को भी वे जानते समझते थे और बिना धार्मिक मतवाद की कट्टरता के उन्होंने इन सब का उपयोग अपने काव्य में पूरी सहृदयता के साथ किया है। ये सारी बातें जायसी को सूफी परंपरा के परंतु भारत के अपने एक बहुत सहृदय और विशिष्ट कवि के रूप में महत्वपूर्ण बनाती हैं। हम ऊपर भारतीय प्रेमाख्यानकों की बात कर रहे थे। हमने कहा है कि जायसी में जिस तरह की कथानक रूढ़ियां मिलती हैं, वे भारतीय प्रेमाख्यानकों में भी मिलती हैं। उनके पद्मावत की काव्य रूढ़ियों की भी हमने ऊपर की बात भी हमने ऊपर की है। फारसी के मसनवी शैली की आख्यानकों में पाई जाने वाली काव्य रूढ़ियों के अलावा पद्मावत में जो अन्य काव्य रूढ़ियां हैं, मसलन षटृत वर्णन और बारहमासा, उनका संबंध भी सूफी प्रेमाख्यानकों के अलावा भारतीय प्रेमाख्यानकों से है। मानसर श्रृंगारिक चित्रण संभोग आदि के जो विवरण पद्मावत में हैं, वे संस्कृत के कुमार संभव और मेघदूत जैसे काव्यों में भी पाए जाते हैं। नायिका के सौंदर्य में परम सत्ता की छवि देखना जैसी बातें भी भारतीय परंपरा के काव्यों में हैं। धर्म सूर की 12 नावों कृति में तथा अन्य कृतियों में भीम 12 मासा भी है। यही बात षटृत वर्णनों के बारे में भी कही जा सकती है। समग्रतः हमारा कहना यही है कि पद्मावत को सूफी प्रेमाख्यान मानते हुए भी उसके अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान रखा जाए, वह भारत की अपनी प्रेमाख्यानक परंपरा का भी उतना ही अभिन्न अंग है। 6. पद्मावत की प्रेम पद्धति। प्रेम कविता का सनातन विषय रहा है। भारतीय चरित्र काव्य हो अथवा फारसी की मसनवी शैली के प्रेमाख्यानक, जिनमें लौकिक प्रेम को ईश्वरोन्मुख बताया गया है या जिनमें साधक अपने माशूक अर्थात प्रियतम के रूप में परमात्मा का ध्यान करता है, प्रेम की महिमा बराबर गाई गई है। जायसी या सूफी कवि और साधक थे, वे भी प्रेम के रंग में डूबे हुए थे। हम बता चुके हैं कि किस प्रकार पद्मावत में उन्होंने पद्मावती रूपी ईश्वर के प्रेम में रत्नसेन रूपी साधक को मतवाला दिखाया है। वे अपने इस रूपक का निर्वाह हमेशा बराबर भले न कर पाए हों, और ऐसा हुआ भी है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, परंतु उनकी ऐसी भावना जरूर रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो यह प्रेम एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में सभी भक्त कवियों में विद्यमान है। सारे भक्त कवि इसे मानते हैं कि प्रेम के बल पर ही भगवान को पाया जा सकता है, भगवान प्रेम के वश में हैं। हमने कबीर, सूरदास, तुलसीदास और मीरा की चर्चा में इस प्रेम तत्व को विशद किया है। आगे भी यह प्रेम रीतिकाल के घनानंद जैसे मुक्त धारा के कवि में अपनी लौकिक संशक्ति को छोड़कर उदात्त होता हुआ एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जिसे ईश्वरीय प्रेम ही माना जा सकता है। इस दृश्य से अमीर खुसरो से लेकर कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा और घनानंद सब एक ही उदात्त प्रेम धारा में अवगाहन करते दिखाई पड़ते हैं। घनानंद में सुजान के प्रति उनका शरीरी प्रेम कैसे उदात्त बनकर ईश्वर प्रेम में बदलता है, उसका साक्ष्य उनका निम्नलिखित सवैया है। अंतर हो किधो अंतर हो, दृग फार फिरो की अभागिन भीरों, आगी जराऊं अकी पानी परों, अब कैसी करो ही अकाबिध धीरों, जो घन आनंद ऐसी रुचि तो कहा बस है इन प्राणनि पीरो, पाऊ कहा हरिहाय तुम्हें धरनी में धसो की आकाश ही चीरों। लौकिक प्रेम का यही ईश्वरीय रूपांतरण अनेक स्थलों पर पद्मावत में जायसी दिखाते हैं। वे कहते हैं कि मानुष प्रेम भय वैकुंठी, जैसी पर अपने पिछले निबंध में हम बता चुके हैं कि पद्मावत में उन्होंने प्रेम की महिमा का कैसा विशद वर्णन और चित्रण किया है। सवाल उठता है कि जैसी ने प्रेम के जिस रूप को पद्मावत में उभारा है उसका स्वरूप क्या है। आचार्य शुक्ल ने जैसी ग्रंथावली में उसकी चर्चा की है। अब तक के भारतीय चरित काव्यों और फारसी की प्रेम कहानियों आदि को समेटते हुए उन्होंने काव्यों में पाए जाने वाले प्रेम की चार मुख्य पद्धतियां बताई हैं। पहले प्रकार का प्रेम उन्होंने उसे माना है जो विवाहोपरांत प्रारंभ होता है और समय बीतने के साथ साथ उत्कर्ष पाता है। रामायण में राम और सीता के प्रेम को उन्होंने इसी तरह का प्रेम माना है और उसकी बहुत प्रशंसा की है। शुक्ल जी की अपनी नीतिवादी सोच के दायरे में यह प्रेम पूरी तरह आता भी है। दूसरी तरह का प्रेम उन्होंने उसे माना है जिसमें प्रेमी प्रेमिका किसी उपवन या सुरभ में जगह में मिलते हैं, उनमें प्रेम हो जाता है और जीवन के समय के साथ साथ उतार चढ़ाव झेलते हुए जो विकसित होता है। विवाह ऐसे प्रेम का प्रतिफल होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम तथा रामचरितमानस में राम और सीता का प्रेम ऐसा ही प्रेम है। इसे संयोग और विप्रलम्ब दोनों के अवसर आते हैं और विपरीत स्थितियों में यह पक्का और मजबूत होता रहता है। तीसरे प्रकार का प्रेम उन्होंने उसे माना है जिसकी शुरुआत राजाओं के अंतःपुर में होती है या उनके उद्यान में। हर्षचरित, रत्नावली आदि में प्रेम का यही रूप है। इसे उन्होंने अत्यंत निकृष्ट कोटि का प्रेम माना है। उन्होंने इसकी भर्त्सना भी की है, इसमें लोलुपता तथा कामुकता को भी उभारा है। चौथे प्रकार का प्रेम उन्होंने उसे माना है जो स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन, गुण श्रवण के उपरांत मन में उदय होता है। इसमें प्रायः तीव्रता नायक की ओर से होती है जो बाद में दूसरे पक्ष में भी दिखाई पड़ती है। फारसी प्रेम कहानियों में तथा उषा अनिरुद्ध जैसे परंपरा के काव्यों में प्रेम का ऐसा ही रूप दिखाई देता है। जाहिर है कि पद्मावत में प्रेम का जो रूप है वह ऐसा ही है। इसमें हीरा मंतोते से सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के रूप की प्रशंसा सुनकर रत्नसेन दीवाना होकर उसको पाने के लिए चल देता है। तमाम आपत्तियां विपत्तियां झेलने के बाद सिंघल द्वीप पहुंचता है और पद्मावती से विवाह करता है। इसके बाद कथा कुछ इतिहास के आधार पर चलती है। अंत में नागमती और पद्मावती दोनों रत्नसेन की चिंता में उसके साथ भस्म हो जाती हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ कथा का विवेचन करना नहीं है, हम यहाँ महज इस तथ्य को उभारना चाहते हैं कि फारसी के प्रेम कहानियों के तरीके का प्रेम होते हुए भी जायसी की अपनी भारतीय सोच के नाते पद्मावत का प्रेम फारसी प्रेम कहानियों की बहुत सी विशेषताओं को समेटते हुए भी अपने को विशिष्ट बना सका है। शुक्ल जी का यह कहना सही है कि फारसी की कहानियों में प्रेम में पहले नायक और कालांतर में दोनों पक्षों में समान तीव्रता के बावजूद फारसी कहानियों का प्रेम एकांतिक और प्रायः लोक पक्ष से शून्य होता है। दीन दुनिया की परवाह न करते हुए फारसी कहानियों के प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे पर दीवाने होकर दीन दुनिया से अलग अपना जीवन जीते हैं और अपने प्रेम की आग में जलकर भस्म हो जाते हैं। यह प्रेम भावना कितनी भी तीव्र और आदर्श क्यों न हो, प्रेम का आदर्श भले ही कितना ऊंचा हो, लोक पक्ष से उसका कटा होना उसकी एक बहुत बड़ी कमी है। इसी बिंदु पर आचार्य शुक्ल ने सूरदास में कृष्ण और गोपियों के प्रेम की भी आलोचना की है। उनके अनुसार कृष्ण और गोपियों का प्रेम भले ही बहुत स्वाभाविक और उदात्त प्रेम हो, उसमें लोक पक्ष का अभाव है, वह एकांतिक प्रेम है। उसका विकास जीवन की नाना स्थितियों और व्यवहारों के बीच नहीं होता। इसके विपरीत राम और सीता के प्रेम को उन्होंने आदर्श माना है और तुलसीदास की प्रशंसा की है। आचार्य शुक्ल जायसी के पद्मावत के प्रेम को यद्य फारसी प्रेम कहानियों की परंपरा का मानते हैं, फिर भी उनका कहना है जायसी के उसे एकांतिक जायसी ने उसे एकांतिक नहीं होने दिया है। यह भारत की अपनी जमीन से जायसी का लगाव था जिसके चलते उन्होंने रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम को जीवन की तमाम स्थितियों के बीच, तमाम सारे नाते रिश्तों के बीच से गुजरते हुए उसे एकांतिक नहीं होने दिया। पूर्वार्ध हो अथवा उत्तरार्ध, कथा के दोनों हिस्सों में उन्होंने प्रेम को समाज तथा उसके व्यापारों से अलग नहीं होने दिया। पद्मावती के प्रेम में बेसुध होते हुए भी रत्नसेन पक्षी से अपनी माता के बारे में सुनकर व्यथित होता है और वापस लौटता है। पद्मावती को व्याहते हुए भी वह नागमती को स्वीकार करता है और दोनों के साथ रहता है। दोनों रानियां भी जीवन के हर मौके पर रत्नसेन का साथ देती हैं। रत्नसेन के बंदी होने पर पद्मावती अपने सहयोगी सरदारों की मदद से उसे अलाउद्दीन के चंगुल से मुक्त कराती है। बाद को जब देवपाल द्वारा रत्नसेन धोखे से मारा जाता है, पद्मावती तथा नागमती दोनों भारतीय सती प्रथा का अनुकरण करते हुए राजपूतानियों की तरह उसकी चिता में उसके साथ सती होती हैं। कहने का मतलब है कि जायसी ने अपने प्रेमी युग्मों को जीवन की नाना परिस्थितियों के बीच से गुजारा है और उन्हें लोक तथा सांसारिक नाते रिश्तों से एकदम अलग नहीं होने दिया है। यही पद्मावत की प्रेम पद्धति की विशेषता है, जो उसे पूरी तरह फारसी की प्रेम कहानियों की तरह एकांतिक और लोकपक्ष से शून्य नहीं होने देती। आचार्य शुक्ल ने इसी बिंदु पर पद्मावत की प्रेम पद्धति की सराहना की है। सात, पद्मावत में रहस्यवाद का स्वरूप। निर्गुण भक्ति कविता में ज्ञान मार्ग के प्रतिनिधि कबीर और प्रेम मार्ग के प्रतिनिधि जायसी प्रायः रहस्यवादी कवियों के रूप में मान्य हुए हैं। आचार्य शुक्ल ने उनकी रचना से आए रहस्यवाद की अपनी कोटियां बनाई हैं। कबीर को उन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद के कवि के रूप में याद किया है, जबकि जायसी के रहस्यवाद को उन्होंने भावात्मक किस्म का रहस्यवाद कहा है और उसे काफी दूर तक स्वीकार किया है। रहस्यवाद की आचार्य शुक्ल द्वारा निर्धारित एक कोटियां कहां तक संगत हैं, यह एक अलग सवाल है जिसके विस्तार में हम नहीं जाने चाहेंगे। यहां हमारा उद्देश्य जायसी के पद्मावत में आए रहस्यवाद को पहचानना और उस पर संक्षिप्त विचार करना है। देखा जाए तो रहस्यवाद संबंधी आचार्य शुक्ल की धारणा विवादास्पद है। बुनियादी तौर पर तो शुक्ल जी रहस्यवाद जैसे किसी विचार को स्वीकार ही नहीं करते। उनकी बुद्धिवादता और उनकी वैज्ञानिकता मानसिकता के अनुरूप ही रहस्यवाद का उनका अस्वीकार है। हम उससे सहमत हैं। इस विषय पर चिंतामणि के भाग दो में संग्रहित काव्य में रहस्यवाद शीर्षक अपने निबंध में बहुत विस्तार से अपनी बातें कह चुके हैं। बुनियादी तौर पर रहस्यवाद को आचार्य शुक्ल काव्य का हिस्सा मानते ही नहीं है। ब्रह्म जीव जगत आत्मा परमात्मा से संबंधित सारे चिंतन को वे बुद्धि के दायरे के चिंतन मानते हैं, जो दार्शनिक ने किया है और दर्शन का अंग है। कविता का संबंध वे हृदय या भाव सत्ता से मानते हैं और उनके अनुसार काव्य के अंतर्गत इस परम सत्ता से मिलने के लिए आत्मा या जीवन का तड़पना और उससे एकात्म हो जाना, उनके अनुसार ये बातें कविता का हिस्सा नहीं हो सकती। कविता में मन के भावों को जगह मिलती है। जहाँ तक भावों का संबंध है वे वहीं तक जाते हैं जहाँ तक का ज्ञान मनुष्य को होता है। शुक्ल जी की बहुत सही स्थापना है कि भाव प्रसार ज्ञान प्रसार के भीतर ही होता है या हो सकता है। जितना हम जानते हैं हमारे सुख दुख से भाव वहीं तक जाते हैं या जा सकते हैं। जिसे हम नहीं जानते वहां तक हमारी भावनाएं नहीं जा सकती। जब ब्रह्म या परमात्मा हमारे ज्ञान के दायरे में है ही नहीं, तो उनके बारे में प्रेम संयोग या विरह का निवेदन भी हम वैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं होना चाहिए ना। इसी बुनियाद पर उन्होंने रहस्यवाद को पूरी तौर पर खारिज किया है और कहा है कि समूची भारतीय परंपरा को देखा जाए तो उसका एक भी कवि रहस्यवादी कवि के रूप में नहीं माना गया। वे वाल्मीकि हो, व्यास हो, कालिदास, भवभोज, तुलसी, सूर, कोई भी क्यों ना हो, यह दर्शन की वस्तु है, काव्य की नहीं। आचार्य शुक्ल अधिक से अधिक यदि रहस्यवाद रहस्य भाव को स्वीकार करते हैं तो जिज्ञासा के स्तर तक। हमने शिष्ट के बारे में, अपने बारे में, जन्म मृत्यु या संसार के रहस्यों के बारे में जिज्ञासा तो हो सकती है, पर जिज्ञासा से आगे जब कोई परम सत्ता से मिलने की संयोग और विप्रलम्ब की भूमिकाएं जुटाता है तो यह सब उसकी बौद्धिक कसरत जरूर मानी जा सकती है, स्वाभाविक कवि कर्म नहीं। रहस्यवाद को आचार्य शुक्ल सामी मतों पैगंबरी मतों की चीज मानते हैं। इन मतों में अद्वैतवादी चिंतन भावना के क्षेत्र में लाया गया और ईसाई हो या मुसलमान परमात्मा के अनेक संबंध मानते हुए अपनी लव लगाते पाए गए। ऐसी अनेक अंग्रेजी कवियों का जिक्र उन्होंने किया है जिन्होंने ईश्वर की उपासना पथ के रूप में की है। यही भाव उनके अनुसार सूफियों में आया और सूफी साधक भी परमात्मा को माशूक मानते हुए उसके इष्ट में दीवाने दिखाई पड़े, हाल की दशा में पहुंचते पाए गए। इस तरह आचार्य शुक्ल का यह मत सही हो या गलत, वे भारतीय या मध्यकालीन भक्ति कविता में जो रहस्यवाद आया है उसके स्रोत सूफियों की इस रहस्य चर्चा को मानते हैं। मेरा पर इन्हीं का प्रभाव है, वे पथ के रूप में कृष्णा की आराधना करती हैं। सूर की गोपियों में भी यही माधुर्य भाव है और कबीर की विरहिणी आत्मा भी इसी तरह परमात्मा रूपी पथ के विवेक में तड़पती है। कहने का तात्पर्य कि शुक्ल जी के अनुसार रहस्यवाद विदेशी चीज है, यह कविता की अपनी परंपरा में नहीं है। इसी नाते उन्होंने भक्त कवियों के इस माधुर्य भाव को भी कभी बहुत सराहा नहीं है। कबीर में तो वे अधिकतर साधनात्मक रहस्यवाद पाते हैं जो नाथपंथियों की योग साधना का साक्ष्य होता है। घट के भीतर परम सत्ता को देखना, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां अनहद सुन समाध, ये सारी बातें योग की बातें और कष्ट साध्य है। उनमें सरसता और रमणीयता नहीं है, वे रूखी बातें हैं, शरीर को कष्ट देने वाली बातें हैं। रही माधुर्य भाव की बात या ईश्वर को प्रियतम के रूप में मानने की बात, वह विश्वसनीय भले हो न हो, वह विश्वसनीय भले न हो, कम से कम उसमें भावुकता है, मन उसमें रमाया जा सकता है, उसमें तन्मयता है। सूफी हो या उनसे प्रभावित भारतीय भक्त, इस तरह के माधुर्य भाव ने उनकी रहस्य वृत्ति को रूखा नहीं होने दिया है। प्रियतम को परमात्मा मानना, उसके नूर को सारे संसार में बिखरा हुआ देखना, इसी में संसार को प्रकाशित होते हुए मानना, उसी के हर्ष को सब जगह अनुभव करना, हंसत जो देखा हंस भा, सब कुछ वे उसके दर्शन करना, जैसी बातें जो जैसी के पद्मावत में पद्मावती के माध्यम से आई हैं, शुक्ल जी को उतनी अप्रिय नहीं लगी। जब पद्मावती अपनी वेणी छोड़कर केशों को फटकारती है, सारा संसार अंधियारे से भर उठता है। आज पंक्तियों में वे काव्यात्मकता भी देखते हैं। इसी नाते जैसी के रहस्यवाद को कबीर की तुलना में भावात्मक रहस्यवाद कहकर उन्होंने ग्राह्य माना है। पद्मावत में ऐसी ढेरों पंक्तियां हैं जिन्हें उद्धृत न करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी भावुकता और सहृदयता के चलते जैसी इस बिंदु पर भी आचार्य शुक्ल को ग्राह्य हुए हैं। रहस्यवाद के बारे में उनकी जो बुनियादी धारणा है उसका उल्लेख हम कर चुके हैं।